بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پویتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, आज़र की 10, रबीउस्सानी की 14 और नवंबर की 30 तारीख। प्रोग्राम में पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद अनमोल बातें पेश होंगी, जिसके बाद आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा और फिर विश्व दर्पण प्रोग्राम पेश होगा और सभा का अंतिम प्रोग्राम है जल संकट। हजरत अली सलाम फरमाते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है मगर जबान का घाव नहीं भरता। आप फरमाते हैं कि अपनी जबान की इस तरह रक्षा करो जिस तरह अपने सोने चांदी की रक्षा करते हो, क्योंकि कभी कभी मुंह से निकली हुई बात किसी बड़ी नेमत के छिन जाने का कारण बनती है। आप फरमाते हैं कि ईश्वरीय नेमत का कम से कम आभार यह है कि ईश्वरीय नेमत को ईश्वर की अवज्ञा में इस्तेमाल ना करो। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारे पेज का एड्रेस है facebook.com/irib हिंदी। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 00989035065492। और अब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्षमा कीजिएगा, और अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फखरीजादी की हत्या के बाद इस प्रकार की कार्रवाइयों की रोकथाम व मुकाबले के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की भारत मेजबानी कर रहा है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन जारी हैं। और सऊदी अरब के हमलों के जवाब में यमनी सेना के हमले में 8 फौजी मारे गए। और अब आप मोहम्मद अली कुम्मी से विस्तार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रूहानी ने वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फखरीजादे की हत्या के बाद इस प्रकार की कार्रवाइयों की रोकथाम व मुकाबले के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। डॉक्टर हसन रूहानी ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक में देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की शहादत पर संवेदना व्यक्त करते हुए इस तरह की अशांति फैलाने वाली कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। इससे पहले इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने भी शहीद फखरीजादे की हत्या पर अपने संदेश में सभी संबंधित लोगों व विभागों से बल देकर कहा था कि इस अपराध को अंजाम देने वालों और अपराध का आदेश देने वालों को निश्चित रूप से सजा दी जाए। विदेश मंत्री ने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि ईरान के वरिष्ठ वैज्ञानिक की हत्या में इसराइल की भूमिका की ठोस निशानियां मौजूद हैं, कहा कि यह हत्या हार के कारण हत्यारों के युद्ध प्रेम की सूचक है। मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का उल्लेख करते हुए कि आतंकियों ने एक वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिक की हत्या कर दी है लिखा कि यह कायरता जिसमें इसराइल की भूमिका के स्पष्ट चिन्ह मौजूद हैं हार के कारण इस कार्रवाई को अंजाम देने वालों के युद्ध उन्माद की सूचक है। विदेश मंत्री ने आगे लिखा कि ईरान यूरोपीय संघ समेत विश्व समुदाय से दोहरे मापदंड छोड़ने और इस सरकारी आतंकवाद की निंदा करने की मांग करता है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने कहा है कि दुश्मन 20 साल से वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या करने की कोशिश में था। अली शमखानी ने कहा कि देश के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इस बात का अंदाजा हो गया था कि ईरान के वरिष्ठ रक्षा वैज्ञानिक की हत्या हो सकती है। राजधानी तेहरान में शहीद फखरीजादे का अंतिम संस्कार हो गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हम किसी भी अपराध को निरुत्तर नहीं छोड़ेंगे। सोमवार की सुबह शहीद की अंतिम यात्रा में रक्षा मंत्री और आईआरजीसी के कमांडर समेत अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल थे। रक्षा मंत्री जनरल अमीर हातमी ने इस अवसर पर कहा कि अगर दुश्मन ने यह अपराध न किया होता तो संभव था कि शहीद फखरीजादे गुमनाम ही इस दुनिया से चले जाते, लेकिन अब पूरी दुनिया ने हमारे इस प्रिय शहीद को पहचान लिया है। ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद इस आतंकी कृत्य का कुछ और ब्यौरा सामने आया है। फार्स न्यूज की एक रिपोर्ट में अपने स्रोतों के हवाले से बताया है कि शुक्रवार की सुबह डॉक्टर फखरीजादे की बुलेट प्रूफ गाड़ी, जिसमें वे अपनी बीवी के साथ सवार थे, एस्कॉर्ट की तीन गाड़ियों के साथ माजंदार प्रांत के रुस्तम कलाय शहर से दमावंद के आफसद इलाके के लिए रवाना हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सुरक्षा पर तैनात एक गाड़ी घटनास्थल से कुछ किलोमीटर पहले संभावित खतरे की चेकिंग के लिए आगे बढ़ी। उसी समय गाड़ी पर कई गोलियां लगी, जिसकी आवाज ने डॉक्टर फखरीजादे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उनकी गाड़ी रुक गई। शहीद ये सोचकर कि आवाज किसी चीज के गाड़ी से टकराने की है, गाड़ी से नीचे उतर आए। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही डॉक्टर फखरीजादे गाड़ी से नीचे उतरे, उनकी गाड़ी से लगभग 150 मीटर की दूरी पर पार्क की गई एक पिकअप से दूर से कंट्रोल किए जाने वाले ऑटोमेटिक हथियार से उनकी ओर फायरिंग होने लगी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के वैज्ञानिक की हत्या में ज़ायनी शासन और आतंकवादी गुट MKO के लिप्त होने का पर्दाफाश हुआ है। ईरान प्रेस के मुताबिक वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या में रिमोट कंट्रोल से लैस मशीन गन का इस्तेमाल हुआ, जो निशान गाड़ी पर लगी हुई थी। ईरानी वैज्ञानिक की हत्या के ब्यौरे से इस हत्या में इसराइल के गुप्तचर संगठन मोसाद और MKO का हाथ होने की पुष्टि होती है। ईरान में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 13,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 371 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता सीमा सादात लारी ने सोमवार को देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की कुल तादाद का जिक्र करते हुए कहा कि डायग्नोस के स्पष्ट मानदंड के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 13,321 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 2,277 लोग भर्ती हुए और बाकी लोगों को OPD पेशेंट के तौर पर सेवा दी गई। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की 19वीं बैठक सोमवार को भारत की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से आयोजित हो रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री ने एक बयान में बताया कि इस वर्चुअल बैठक में रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग लेंगे। ये बैठक हर साल प्रधानमंत्री स्तर पर आयोजित होती है और इसमें सदस्य देशों के आर्थिक व व्यापारिक सहयोग के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगे, बल्कि उनका प्रतिनिधित्व उनके विदेशी मुद्दों के लिए संसद सचिव अंदलीब अब्बास करेंगे। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों के प्रदर्शन जारी हैं। इन प्रदर्शनों में हजारों की तादाद में किसान शामिल हैं और सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सशर्त बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों के आंदोलन के 5 दिन बाद भी किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। वे न तो दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए प्रदर्शन स्थल पर जा रहे हैं और न ही दिल्ली बॉर्डर से हट रहे हैं। किसानों ने सड़क पर ट्रॉलियों को ही घर बना लिया है। किसानों का अब नया नारा है, दिल्ली चलो के बजाय दिल्ली घेरो। किसानों ने कहा है कि वे अब दिल्ली के 5 स्थानों पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हम काला कानून रद्द कराने आए हैं और हम दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद करेंगे। किसानों ने कहा कि हमारे पास 6 महीने तक का राशन है और हमें सरकार के खाने की जरूरत नहीं है। यमनी सेना ने बताया है कि मारी प्रांत में यमनी बलों के मिसाइल हमले में सऊदी गठजोड़ के 8 सैनिक मारे गए। यमन की सेना के प्रवक्ता यहिया सरी ने रविवार की रात बताया कि सेना और स्वयंसेवी बलों ने मारी प्रांत की तदावीन छावनी पर मिसाइल से जवाबी हमला किया, जिसमें सऊदी गठजोड़ में शामिल 8 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 7 घायल हुए। उन्होंने बताया कि तदावीन छावनी में सऊदी गठजोड़ के संयुक्त वॉर रूम पर बद्र-P नामक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें सऊदी अरब के 8 सैनिक मारे गए। यमनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगर सऊदी गठजोड़ ने यमन पर हमले और उसके घेराव को जारी रखा तो उसके ठिकानों पर यमनी बल के हमले भी जारी रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
अनमोल बातें
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई युद्ध में पैगंबर इस्लाम और उनके साथियों के जिहाद की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने जिहाद नफ्स को यानी अंतरात्मा से जिहाद को दुश्मन से बड़ा जिहाद बताया है और आत्मा के शुद्धिकरण पर बल दिया है। एक बार पैगंबर इस्लाम एक युद्ध से लौट रहे थे और उस युद्ध में विजयी भी हुए थे और मुसलमान बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने बड़ा काम किया है। इसी मद पैगंबर इस्लाम ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग छोटा जिहाद करके लौटे हैं और अब उससे बड़े जिहाद की बारी है। मुसलमानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पैगंबर इस्लाम से कहा कि इससे बड़ा क्या जिहाद है, इतना कठिन जिहाद हम लोगों ने किया, इतनी दूर रास्ता चलकर आए, गर्मी सहन की और इतने शक्तिशाली दुश्मन को पराजित करके हम लौटे हैं और आप कह रहे हैं कि ये छोटा जिहाद है। उसके बाद मुसलमानों ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हे ईश्वरीय दूत, इससे बड़ा कौन सा जिहाद है। इस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतर आत्मा से जिहाद। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ईरानी राष्ट्र को जिहाद नफ्स यानी अंतर आत्मा से जिहाद पर ध्यान देना चाहिए। हमें स्वयं का निर्माण करना चाहिए, हमें स्वयं को पाक व शुद्ध रखना चाहिए, हमें अपने नफ्स को अपनी आत्मा को महान ईश्वर से परिचित कराना चाहिए। ये जिहाद विदित जिहाद से बड़ा है, ये जिहाद विदित दुश्मन से युद्ध करने से बड़ा है। समस्त पैगंबर इंसानों को इंसान बनाने के लिए आए, वे इंसानों के अंदर के अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए आए ताकि उन्हें उनके अंदर के गलत विचारों व उकसावे से मुक्ति दिलाएं। दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको ये बताएंगे कि पैगंबर इस्लाम का पवित्र अस्तित्व इंसानों को अज्ञानता के अंधेरे से निकालने के लिए ईश्वरीय उपहार है। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई ईरानी राष्ट्र और विश्व के समस्त मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम की उपमा एक चमकते सूरज जैसी है और कहते हैं कि इस सूरज का उदय अज्ञानता के काल में हुआ और उसने विश्व को प्रकाशित कर दिया। दुनिया अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई थी, उस महान ईश्वर ने इस प्रकाश को मानवता के उपहार स्वरूप प्रदान किया। आज पैगंबर इस्लाम का पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, परंतु मार्गदर्शन करने वाला उनका धर्म हमारे पास है। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर हम इस धर्म व प्रकाश का अनुपालन करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि हम मुक्ति व कल्याण प्राप्त करने वालों में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोतो राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, ईरान के महान वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की शहादत की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। तुर्की की मीडिया ने शहादत की खबर आते ही इस आतंकवादी कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं को लेकर टीकाकारों और विशेषज्ञों के साथ अपने दर्शकों के लिए कार्यक्रम दिखाना आरम्भ कर दिया था। इस कार्यक्रम में एक बात संयुक्त रूप से दिखाई दे रही थी और वो ये थी कि ईरान के महान वैज्ञानिक की हत्या का मुख्य योजनाकार इसराइल है।
मोहसिन फखरीजादे।
अमेरिका और रूस के मध्य अभूतपूर्व ढंग से तनाव में वृद्धि हो गई है। रोचक बात यह है कि ये तनाव उस वक्त बढ़े हैं जब जो बाइडेन सत्ता संभालने वाले हैं। ये तनाव उस समय आरंभ हुआ जब अमेरिकी युद्धपोत रूस की जलसीमा के 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। इस पर रूस की नौसेना ने कड़ी चेतावनी दी, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी युद्धपोत पीछे हटने पर बाध्य हो गया। भारत की केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 कानून पारित किए हैं, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का क्रम यथावत जारी है। प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच करने पर आग्रह कर रहे हैं। भारत सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए जो शर्त रखी थी, किसानों ने उसे ठुकरा दिया।
और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है।
श्रोताओ, ईरान के महान वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की शहादत की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। तुर्की की मीडिया ने शहादत की खबर आते ही इस आतंकवादी कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं को लेकर टीकाकारों और विशेषज्ञों के साथ अपने दर्शकों के लिए कार्यक्रम दिखाना आरंभ कर दिया था। इस कार्यक्रम में एक बात संयुक्त रूप से देखी जा रही थी और वो ये थी कि ईरान के महान वैज्ञानिक की हत्या का मुख्य योजनाकार इसराइल है। हमीद कामिली की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही रविश सैदी।
ईरान के महान वैज्ञानिक की शहादत की खबर पूरी दुनिया में व्यापकता से दिखाई गई। तुर्की की मीडिया ने शहादत की खबर आते ही इस आतंकी कार्रवाई के अलग अलग पहलुओं को लेकर टीकाकारों और विशेषज्ञों के साथ अपने दर्शकों के लिए कार्यक्रम दिखाना शुरू कर दिया था। इन कार्यक्रमों में एक बात संयुक्त थी कि ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना था कि ज़ेनु शासन इस आतंकी कार्रवाई का मुख्य योजनाकार है, जिसका साथ और सहयोग क्षेत्र के अमरीकी एजेंटों ने दिया है।
मोहसिन फखरीजादे।
तुर्की के एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि ये सभी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
सुलेमानी'nin ölüm yıl dönümüne
शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के मौके पर हम देख रहे हैं कि ज़ायूनी लाबी अमेरिका और उसके क्षेत्रीय एजेंडों के समर्थन से इस्लामी गणतंत्र ईरान को क्षति पहुंचाने की ताक में है। हम ईरानी राष्ट्र की इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मेरा मानना है कि ज़ायूनियों और साम्राज्यवादी शक्तियों से मुकाबले का समय आ गया है। सभी मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। ईरान के महान वैज्ञानिक की हत्या की निंदा तुर्की की राजनीतिक हस्तियों के अलावा सांस्कृतिक और अकादमिक हस्तियों ने भी की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने शहीद फखरीजादे की शहादत पर ईरानी राष्ट्र को सांत्वना पेश करते हुए इस आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने और षड्यंत्र रचने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तुर्की की अन्य हस्तियां, संगठन, संसद सभापति और राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने एक जमान में ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया और साथ ही ईरान के महान वैज्ञानिक की कायराना तरीके से आतंकी कार्रवाई के जरिए हत्या की निंदा की। अंकारा से IRIB के लिए हमीद कामेली की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
अमेरिका रूस के मध्य अभूतपूर्व ढंग से तनाव में वृद्धि हो गई है। रोचक बात यह है कि ये तनाव उस वक्त बढ़े हैं जब जो बाइडेन सत्ता संभालने वाले हैं। ये तनाव उस समय आरंभ हुआ जब अमेरिकी युद्धपोत रूस की जलसीमा के भीतर 2 किलोमीटर तक अंदर घुस गया। इस पर रूस की नौसेना ने कड़ी चेतावनी दी, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी युद्धपोत पीछे हटने पर विवश हो गया। सैयद अली दराबी की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कमर अब्बास।
आजकल विशेषकर जो बाइडेन के सत्ता संभालने के अवसर पर अमेरिका और रूस के मध्य तनाव में अभूतपूर्व ढंग से वृद्धि हो गई है। ये तनाव उस समय आरंभ हुआ जब अमेरिकी युद्धपोत रूस की जलसीमा के 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। इस पर रूस की नौसेना ने कड़ी चेतावनी दी, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी युद्धपोत पीछे हटने पर मजबूर हो गया। किंतु जिस चीज ने सबसे अधिक अमरीकियों, विशेषकर इस देश की नई सरकार को चिंतित कर दिया है, वो रूस द्वारा मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन है। इस मिसाइल का नाम सिरिकॉन है और इसकी गति ध्वीन से 8 गुना अधिक है। ये युद्धपोत की हत्यारी मिसाइल के नाम से जानी जाती है। एक रूसी सैनिक अफसर का कहना है कि रूस की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बहुत अच्छी तरह सैन्य संतुलन स्थापित करती है। रूस ने पिछले सप्ताह केवल सिरिकॉन मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक अन्य एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यद्यपि इस बारे में अधिक जानकारी नहीं प्रकाशित की गई है। जो बाइडेन और अमेरिका की नई सरकार के लिए नई मिसाइलों के परीक्षण का स्पष्ट संदेश है। वो संदेश यह है कि रूस से टकराने की कोशिश न करना। ट्रंप भी अपनी सरकार के अंतिम दिनों में बेकार नहीं बैठे। उन्होंने ईरान को संवेदनशील संसाधनों को स्थानांतरित करने के आरोप में 2 रूसी और 2 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रूसी नागरिक का कहना है कि ईरान को तकनीक और संवेदनशील उपकरणों को स्थानांतरित करने पर आधारित अमरीकी दावा पूरी तरह से निराधार है। इसी बीच अमेरिका ने दूर तक मार करने वाली हिमास मिसाइल प्रणाली को रोमानिया से दोबारा जर्मनी भेज दिया है। पिछले सप्ताह ही उसने इस सिस्टम को जर्मनी से रोमानिया भेजा था और इस प्रणाली को युद्धाभ्यास के लिए रोमानिया में तैनात किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने अमेरिका को जो कड़ी चेतावनी दी है, वो अमेरिका के पीछे हटने में प्रभावी थी। सैयद अली दाराबी, IRIB, मॉस्को।
भारत की केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 कानून पारित किए हैं, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का क्रम यथावत जारी है। प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच करने पर आग्रह कर रहे हैं। भारत सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए जो शर्त रखी थी, किसानों ने उसे ठुकरा दिया है।
3 विवादित कृषि कानूनों के विरुद्ध भारतीय किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी रहा और वे दिल्ली कूच करने पर अडिग हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में जो दिल्ली से मिलने वाली उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर हो रहे हैं, हजारों की संख्या में किसान उपस्थित हैं और केंद्र सरकार से ऐसे कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं जिन्हें वे किसान विरोधी बता रहे हैं। दिल्ली चलो आंदोलन के तहत हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश करके रामलीला मैदान में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सुरक्षा कड़ी कर दी है। किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सशर्त वार्ता की पेशकश ठुकरा दी है, जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि वार्ता से पहले किसानों को सीमाओं से हटकर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाना होगा। किसान संगठनों ने इस पर विरोध करते हुए कहा कि सरकार को ये भूल जाना चाहिए कि किसान उसकी शर्त स्वीकार करके वार्ता के लिए तैयार हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 3 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। किसान नेताओं ने कहा कि बुलाड़ी कोई मैदान नहीं, ओपन जेल है। किसानों द्वारा वार्ता की पेशकश ठुकराए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में बैठक की, जिसमें किसानों के आंदोलन से उपजी स्थिति की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से वार्ता कर चुकी है और अब भी वार्ता के लिए तैयार है, मगर इसके लिए माहौल तैयार करना होगा।
और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान निरंकारी मैदान को दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे।
बराड़ी पार्क कोई आंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असि ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे।
उधर सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि MSP जारी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि वार्ता से गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली है। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है, तो इसलिए इसके बारे में ठीक ढंग से डायलॉग होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, लोगों को बात करना चाहिए।
शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा जल संकट पर। उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण। दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम का विषय है ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की कायराना हत्या। हम आशा करते हैं कि हमेशा की तरह हमारा आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। ईरान के रक्षा मंत्रालय में रिसर्च एंड इन्वेंशन संस्था के प्रमुख मोहसिन फखरीजादे महाबादी इस्लामी गणतंत्र ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों में से एक थे। 27 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन मोहसिन फखरीजादे अपने कुछ परिवार वालों और सुरक्षा बलों के साथ राजधानी तेहरान के उपनगरीय क्षेत्र दबावंत के आबे सर्द इलाके में थे कि तभी आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटक पदार्थों से लदी एक गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया और उसके बाद उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये हमला शुक्रवार को दोपहर 2:40 पर किया गया। इस हमले में मोहसिन फखरीजादे के साथ उनके कुछ रिश्तेदार और सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह घायल हो गए। हमले के बाद ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया, किंतु डॉक्टर उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हुए और वो शहीद हो गए। वरिष्ठ वरिष्ठ ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की शहादत पर इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सईद अली खामनाई ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परमाणु वैज्ञानिक शहीद फखरीजादे की हत्या करने और हत्या का आदेश देने वालों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने शनिवार को दिए अपने संदेश में कहा कि इस महान वैज्ञानिक व प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ने जिन्हें किराए के अपराधी व क्रूर टट्टुओं ने शहीद कर दिया, महान व अमर वैज्ञानिक कोशिशों के कारण अपनी जान ईश्वर की राह में निछावर कर दी और शहादत का उच्च दर्जा उनके लिए ईश्वरीय पारितोषिक है। इसी तरह ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की शहादत पर दिए अपने शोक संदेश में कहा,
हमें ये दुश्मनान ईरान به خوبی بدونند ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند.
राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि एक बार फिर विश्व साम्राज्य ने अवैध ज़ायोनी शासन के हाथों ईरान के एक सपूत के खून से अपने हाथ रंगीन कर लिए हैं और ईरानी जनता को एक सक्रिय वैज्ञानिक को खोने के दुख में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये आतंकी घटना महान ईरानी राष्ट्र की बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों के मुकाबले में ईरान के कट्टर दुश्मनों की अक्षमता और क्षेत्र व संसार के राजनीतिक मैदान में उनकी लगातार पराजयों के कारण है और इसने उनके अन अमानवीय कार्यों की तरह एक बार फिर उनकी दुष्टता व द्वेष को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। IRGC के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान के अहम परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद एक संदेश में कहा कि इस प्रकार के अपराधों से वैभवशाली व मजबूत रास्ते पर चलते रहने के ईरानियों के संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अपराध में लिप्त लोगों से कड़ा बदला कार्य सूची में शामिल हो गया है। वहीं ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की आतंकी कार्रवाई में हत्या किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस अपराध की निंदा करने के बजाय सभी पक्षों से कहा कि वे तनाव बढ़ाने से दूर रहें। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की ओर से ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में सामने आई है जब राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी दूत मजीद तख्त रवानची ने सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाकी बचे सत्ता काल में अमरीका व ज़ायोनी शासन की ओर से की जाने वाली संभावित कार्रवाइयों के बारे में वार्निंग दी है और कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों के खिलाफ स्पष्ट सरकारी आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है और सुरक्षा परिषद व राष्ट्र संघ के महासचिव को इसकी निंदा करनी चाहिए। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी ने वैज्ञानिक शहीद मोहसिन फखरीजादे के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उनके प्रति सांत्वना पेश की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
ईशुन मावन वजीर दफा व रईस साजमान पजूहश व नोआवरी है दफाई कश्वर बुदन दाराय एक वजहे इल्मी बाला व साबिगे तूलानी दर नोआवरी है दफाई कश्वर हस्तंद।
उन्होंने कहा कि वो हमारे सहायक थे, वो बहुत ही अनुभवी वैज्ञानिक थे। अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी राष्ट्र के दुश्मन वैज्ञानिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह दुश्मन हमारे वैज्ञानिकों की हत्या कर रहे हैं, ये उनके दिल में भरे द्वेष को दिखाता है। इस बीच ईरान के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की शहादत पर उनकी पत्नी के बयान ने तो पूरे ईरान सहित हर इंसाफ पसंद इंसान के दिलों को रुला दिया। साथ ही उनका साहस देखकर पूरा ईरान ان پر گرو کر رہا ہے۔ شہید فخری زادے کی پتنی نے سب سے پہلے اپنے پتی کی شہادت پر پورے ایرانی راشٹر اور اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا کو مبارکباد پیش کی۔
سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز و عرض تبریک به شهادت ایشون رو تبریک میگم به همه، به امام زمان و مقام معظم رهبری که بهشون ایمان داشتن و عاشقشون بودن و کل ملت شریف ایران، تبریک عرض میکنم شهادتشون رو۔
شہید فخری زادے کی پتنی کا کہنا تھا کہ جس طرح وہ ایک بہت ہی بڑے ویگیانک تھے، ویسے ہی وہ ایک بہترین پتی، باپ اور ایک بہت ہی مہربان انسان بھی تھے۔ وہ اپنے دیش سے بہت پریم کرتے تھے۔
این شہید در این حالی که یک دانشمند بودن، بسیار همسر مهربان و دلسوز بودن و مدبر بودن و کشورشون رو دوست داشتن۔
شہید فخری زادے کی پتنی نے پورے ایرانی راشٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے راستے کو آگے بڑھائیں تاکہ ان کی آتما کو شانتی ملے۔
و من خواہش میکنم از اونهایی که هستن راهشون رو ادامه بدن و اجازه ندن خونشون پایمال بشه، چون مسیرش خیلی مهم بود براش و خونشو پاش گذاشت و لحظه لحظه زندگیشو برای این کار گذاشت و عاشقانم این کار رو انجام میداد و من خواهش میکنم نذارن خونش پایمال بشه و مسیرش ادامه پیدا کنه۔
شہید محسن فخری زادے کی شہادت پر نہ کیول ایران بلکہ پوری دنیا سے راج نیتاؤں اور پرتیروز سنگھٹنوں ایوم ورشٹھ ہستیوں کی پرتکریائیں سامنے آ رہی ہیں۔ حزب اللہ کے اپ مہا سچیو شیخ نعیم قاسم نے ویگیانک فخری زادے کی شہادت پر پرتکریا دیتے ہوئے کہا،
کل التحیہ للسید العالم الکبیر فخری زادہ ولکل اخوانہ واحبتہ وعائلتہ ونحن مع ایران فی موقفها ضد الفساد المستشری فی العالم على ید امریکا و اسرائیل۔
انہوں نے محسن فخری زادے کی شہادت کو نہ کیول ایران بلکہ سبھی پرتیرودھ آندولنوں کے لیے بڑی شتی بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی سندے نہیں ہے کہ اس جگہ نے اپرادھ کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشور کے راستے پر چلنے والے کبھی بھی شہادت سے نہیں ڈرتے بلکہ یہ ان کے لیے ایک سمان کی بات ہے۔ ایران کے ورشٹھ ویگیانک شہید محسن فخری زادے کی کائرانہ طریقے سے کی گئی ہتیا کے بارے میں بھارت کے ورشٹھ پترکار اور پرسدھ راجنیتک ٹیکاکار عزیز حیدر نے پارس ٹوڈے ہندی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
ایران کے بہت ہی اہم نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادے کے اسیسینیشن کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بہت ہی پریشان کرنے والی ہیں۔ اسرائیل کے پردھان منتری نتن یاہو کی مائیکل پومپیو اور محمد بن سلمان سے ہوئی خفیہ میٹنگ جو خفیہ رہ بھی نہیں پائی، اس کے بعد ہم میڈیا کمیونٹی میں قیاس لگا رہے تھے کہ پریسیڈنٹ ٹرمپ کے اپنا پریسیڈنشل ٹرم سماپت کرنے سے پہلے ایران پر کوئی نہ کوئی کاروائی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا کاروائی ہوگی اور کس سمت سے ہوگی اس پر صرف قیاس ہی کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہی محسن فخری زادے یدی امریکہ یا اسرائیل کے سائنٹسٹ ہوتے تو ان کو ایوارڈز دیے جا رہے ہوتے، ان کو سمانت کیا جا رہا ہوتا، اور تب یدی ان پر اسیسینیشن اٹیمپٹ کیا گیا ہوتا تو پوری دنیا اس کو ٹیررسٹ اٹیک کہہ رہی ہوتی، دیش کے شہری پر حملہ مطلب دیش پر حملے کی بات کر رہی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ ایران کے سائنٹسٹ تھے اس لیے ورلڈ میڈیا اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ کہہ کر اسیسینیشن اٹیمپٹ کہہ رہا ہے۔ دوسرے کے دیش میں سویلین علاقے میں اپنی کار سے جا رہے سویلین پر حملہ یدی ٹیرر ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیسے یہ کیسا سسٹم ہے کہ امریکہ میں جب ایک پریسیڈنٹ الیکشن ہار چکا ہے تو وہ بھی جاتے جاتے دنیا کو ودھونس اور تباہی کے منہ پر لا سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہمیں امید تھی کہ حالات سدھریں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے کچھ طاقتیں مڈل ایسٹ کے حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جانا چاہتی ہیں۔ اس میں سعودی عرب بھی ان طاقتوں کی कठपुतली बना हुआ है, सबसे अधिक खेत का विषय यह है। इस्लाम का कानून एकदम साफ है कि किसी भी बेगुनाह की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या करने के बराबर है। और ये ताकतें कुछ ऐसी हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दसियों पचासियों हजारों लोगों को मरवा सकती हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हम एक और खबर सुन रहे हैं। बीते दिनों में भी हमने सुना था कि कुछ ईरानी साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया था, और अब फिर एक बहुत ही मुख्य ईरानी साइंटिस्ट को जो असैसिनेट किया गया है। ये अमन की कोशिश नहीं है उस इलाके में, मैं तो बस यही कहूँगा।
ईरान के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे, जहां परमाणु विज्ञान में उन्हें बड़ी ख्याति प्राप्त थी, वहीं उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान इस महामारी से मुकाबले के लिए उसकी वैक्सीन बनाने की जारी प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये पहली बार नहीं है कि जब ईरान के किसी वैज्ञानिक की हत्या हुई हो। इससे पहले भी आतंकी हमलों में ईरान के वैज्ञानिकों की हत्याएं की जाती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक वैज्ञानिक जो न केवल अपने देश की सेवा करता है, बल्कि उसके द्वारा आविष्कार की जाने वाली चीजों से पूरी इंसानियत फायदा उठाती है, तो फिर क्यों ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या की जा रही है और उनका दुश्मन कौन है? इस बीच इसराइली प्रधानमंत्री का एक वीडियो सामने आया है जो शहीद मोहसिन फखरीजादे का नाम ले रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं।
Key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsin Fakhrizade, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizade.
अब विश्व समाज जान चुका है कि इस दुनिया का असली दुश्मन कौन है और इस दुनिया की बढ़ती तरक्की का शत्रु कौन है। अगर अभी भी समय रहते नेतन्याहू जैसे लोगों को काबू में नहीं किया गया, तो ये अपनी सनक और दूसरों के लिए इनके दिलों में भरा जहर केवल एक समाज को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, जिससे बहुत बड़ी तबाही फैलेगी। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
जल संकट।
दोस्तों, कार्यक्रम जल संकट की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम हेरताती और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हम अगले कुछ कार्यक्रम में पानी और उसके महत्व और उसके सामने चुनौतियों और चुनौतियों के निवारण पर चर्चा करेंगे। प्रकृति ने इस धरती पर हमारे और जीवन के लिए आवश्यक जल का प्रबंध करके अपना कर्तव्य निभा दिया है। प्रकृति ने इस धरती पर जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण पानी को बादलों की शक्ल में धरती पर बर्फ के रूप में, भाप के रूप में भी सजोया है। धरती के ऊपर जो पानी मौजूद है वो अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरह का होता है, लेकिन ये निश्चित है कि ये पानी भूमिगत जल भंडारों की तुलना में अधिक प्रदूषित होता है। लेकिन पानी जैसा भी होता है वो धरती के लिए किसी न किसी प्राणी के काम आता है। पानी की जरूरत पूरी दुनिया में मानव इतिहास के हर काल में पूरी तरह से समझी गई।
पानी जरूरत की चीज होने के साथ ही साथ हमेशा इंसानों के लिए पवित्र और पवित्रता का साधन रहा है, और ईरान तथा विश्व के बहुत से देशों और समाजों में इसे बरकत और विभूति के रूप में देखा जाता है। ईरान में पानी को कवियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने अलग रूप में भी देखा है, जिसकी मिसाल उनके शेरों में मिलती है।
जल ही जीवन है, और मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद में भी कहा गया है कि हमने हर चीज को पानी से जीवन प्रदान किया। जल को जीवन का आरंभ बिंदु भी कहा जाता है, और वास्तव में हर प्राणी का जीवन पानी से ही शुरू होता है। हर जीवित प्राणी की अधिकांश कोशिकाएं पानी से बनी होती हैं। मानव शरीर में सेल्स का जो जाल है उसका अधिकांश भाग पानी होता है, और अगर पानी नहीं हो तो फिर जीवन भी नहीं है। यही वजह है कि मानव सभ्यता में पानी को हमेशा महत्व प्राप्त रहा है, और यही वजह है कि ईरानी संस्कृत में पानी को इस सृष्टि की रचना में मुख्य भूमिका निभाने वाला तत्व समझा जाता है। ईरान की प्राचीन सभ्यता में भलाई व बुराई के युद्ध में पानी की मुख्य भूमिका मानी गई है। यही वजह है कि ईरानी संस्कृत की जड़ों में पानी को बेहद पवित्र समझा गया है, और उसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन ईरानी आर्य जाति और इंडो यूरोपीय घराने से संबंध रखते थे। इसी प्रकार धार्मिक संस्कारों और भाषा ज्ञान से पता चलता है कि इन प्राचीन ईरानियों के संस्कारों और आस्थाओं में पानी को विशेष महत्व प्राप्त था। ये संस्कार और रीति रिवाज संभावित रूप से दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुए थे।
इंडो यूरोपियन सभ्यता में पानी के पवित्र होने के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। ये लोग हर पानी को और कभी नदियों और समुद्रों के रूप में मौजूद पानी की पूजा करते थे और उसका विशेष रूप से सम्मान करते थे। शायद पालनहार और पालने की जो विशेषता और प्राण देने का जो गुण पानी में है, उसी की वजह से पानी के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता था। इंडो यूरोपियन सभ्यता में पानी की ही तरह आग को भी विशेष महत्व प्राप्त था, और ये सभ्यता बहुत दिनों तक जारी रही और उसके प्रभावों को आज भी देखा जा सकता है। पानी का बखान इंडो यूरोपीय सभ्यता में बहुत मिलता है। वेदों में भी पानी के महत्व को बयान किया गया है। पानी को देवी, माता और जवान बेवा के रूप में पेश किया गया है, जो अपने पुजारियों को लंबी उम्र, स्वास्थ्य और अमरत्व देती है। इन ग्रंथों के आधार पर पानी बुराइयों और पापों को धो देता है, रोगों को ठीक करता है और सभी पेड़ पौधों का जीवन स्रोत है।
प्राचीन ईरानियों की विचारधारा में दूसरी सृष्टि पानी की हुई है। ओरमज़्द ने पानी को आकाश के हृदय से पैदा किया ताकि उसकी मदद से दुनिया को जीवन और ताजगी प्रदान किया जाए, और इसी पानी से हवा, बारिश, बादल, बर्फ बनाया। इसी प्रकार प्राचीन मत के अनुसार पूरी दुनिया का मध्य भाग जहाँ रचना व सृष्टि से संबंधित बदलाव होते हैं, और जो धरती का केंद्र है वो दायित्व या वेह दायती नाम की एक नदी का तट है जो इरानोविच यानी असल ईरान में स्थित है। इस मतानुसार पानी की रचना ईरानी कैलेंडर के दूसरे महीने उर्दी बहिश की 16 तारीख से शुरू हुई और तीर महीने के 11 तारीख तक जारी रही। इस सृष्टि की रचना में मुख्य तत्व पानी की रचना की कहानी प्राचीन सभ्यता में बेहद दिलचस्प है। ईरानी सभ्यता में तो हमेशा से ही पानी एक पवित्र पदार्थ रहा है जिसका सीधे रूप से ईश्वर धर्म और आस्था से रहा है। ये रोचक कहानी अगले कार्यक्रम में भी जारी रहेगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज।
दोस्तों अभी आपने कार्यक्रम जल संकट सुना और अब आप मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर से सुन लें। ईरान के राष्ट्रपति ने वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फखरीजादे की हत्या के बाद इस प्रकार की कार्रवाइयों की रोकथाम व मुकाबले के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की भारत मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों के प्रदर्शन जारी हैं। सऊदी अरब के हमलों के जवाब में यमनी सेना के हमले में 8 फौजी मारे गए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है जिसमें आप विस्तृत समाचार देख सकते हैं और दूसरी सामग्री भी देख सकते हैं। तो पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/irib हिंदी। तो दोस्तों इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। मुझे मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।